समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश। हेलो, नमस्कार, वेलकम अलोंग लिसनर्स, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड माय को होस्ट मुकेश। वेल यस, वी विल शेयर अ लॉट विद यू टुडे, अ लॉट टू अनफोल्ड एंड यस, ऑल ऑफ दिस विल हैपन ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। लेट्स बिगिन विद द हेडलाइन स्ट्रेट।
जी, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा पर अपने आदेश पर रोक लगाई, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मांगी।
The apex court stays Delhi High Court's order allowing suspension of Sanger's life sentence in Unnao rape case. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says 100% Australian tariff lines will be zero duty for Indian exports from 1st of January next year.
उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं बाधित, 64 उड़ानें रद्द।
13 people killed and 98 injured after a passenger train derails in Mexico.
और भारत के अर्जुन एरगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते।
So listeners, this is time for our segment Dateline India and today we will talk about traditional arts as discussed by Prime Minister Narendra Modi in his program Mann Ki Baat. So India's traditional crafts are more than artistic expressions. Well, they are living legacies shaped by centuries of skill, culture and community. And this ranges from intricate handlooms to timeless metal, wood, as well as clay work. And each craft, it carries a story of heritage and identity, Mukesh.
जी हाँ श्रोताओं, हम आपको पारंपरिक शिल्प कला की समृद्ध दुनिया की खोज की यात्रा पर ले जाएंगे जहां कारीगरों ने इन परंपराओं को जीवित रखा है, पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों को और आधुनिक वैश्विक युग में भारत की शिल्प कला की स्थायी प्रासंगिकता को बनाए रखा है।
सो टचिंग अपॉन दिस टॉपिक ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द लेस क्राफ्ट ऑफ नरसापुरम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, this is gaining popularity across the country. So craft work, this has been really famous in western countries as well, but ours, Narsapuram districts, Andhra Pradesh, it is gaining popularity across the country. And he said that this lace craft has been in the hands of women for generations. So addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, PM added that the women of the country have preserved it with patience and meticulousness. Today, this tradition is being carried forward with a new dimension.
जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड संयुक्त रूप से कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और उन्हें नए बाजारों से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नरसापुरम लेस को GI टैग भी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। नरसापुरम लेस से इस समय 500 से अधिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं और 250 से अधिक गांवों की लगभग 1,00,000 महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है।
हमारी पारंपरिक कलाएं समाज को सशक्त करने के साथ ही लोगों की आर्थिक प्रगति का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ रही है। ये लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी शक्ति ने इसका संरक्षण किया है। आज इस परंपरा को एक नए रंग रूप के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और नए बाजार से जोड़ रहे हैं। नरसापुरम लेस को GI टैग भी मिला है।
We have more information on this from our correspondent. Let's listen in.
The craft of crochet lace making is being practiced as a skill by numerous rural women within a 50-kilometer radius of Narsapuram town. The local population, particularly women, are acquiring this craft from one another and are engaging in self-employment, despite the fact that it demands minimal skill. Consequently, exporters continue to dispatch lace products gathered from thousands of women to international markets via agents. The lace industry in Narsapuram has recorded a notable achievement by obtaining a geographical indication GI tag in March 2025, which boosted the brand recognition and its market worth. Currently, the sector employs approximately 15,000 women from more than 250 villages and produces over 500 different types of lace products. By December this year, exports valued 150 crore rupees have been recorded. Further, to modernize the industry, Andhra Pradesh government, with the support of NABARD, is offering skill development training, introducing modern designs and enhancing market linkages. Satya for Parikrama from Vishakhapatnam.
So yes, we were telling you about the lace craft of Narsapuram district in Andhra Pradesh, as told by Prime Minister Narendra Modi. And he also hailed the efforts of Margaret Ramtharsiam of Churachandpur, Manipur. So Margaret saw Manipur's traditional products, its handicrafts and items made from bamboo and wood with a broad vision. So the Prime Minister said that from being a handicraft artist, she has developed a market for her own products in several states, including Delhi. So today, Margaret's unit employs over 50 artists.
जी हाँ, श्री मोदी ने कहा कि सेनापति जिले की निवासी चोखेने क्रिचेना मणिपुर का एक और उदाहरण है। क्रिचेना का पूरा परिवार पारंपरिक खेती में लगा हुआ है और उन्होंने इस पारंपरिक अनुभव को और भी व्यापक रूप दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने फूलों की खेती को अपना जुनून बना लिया, इस काम को विभिन्न बाजारों से जोड़ा और अपने क्षेत्र के स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि जब पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाता है तो ये आर्थिक प्रगति का एक और प्रमुख साधन बन जाता है।
मन की बात ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं। मणिपुर के चूराचांदपुर में मार्गरेट रामथारसी एमजी, उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई। आज मार्गरेट जी की यूनिट उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केट भी डेवलप किया है।
The Prime Minister also spoke about the Kutch Ranotsav, which began on 23rd of November and will continue until the 20th of February. So he said that diverse folk culture, folk music, dance and handicrafts of Kutch are on display there. He added that witnessing the grandeur of White Run of Kutch is a delightful experience in itself. He said that over 2 lakh people have participated in the Ranotsav in the past month from all corners of the country and even from abroad, Mukesh.
बिल्कुल शगुन, गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ का विश्वविख्यात सफेद रण एक बार फिर देश दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से कच्छ में आयोजित हो रहे रण उत्सव का अनुभव लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सफेद रण की भव्यता और रण उत्सव में झलकती कच्छ की लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता को अनोखा बताया। आइए भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी से जानते हैं कि कैसे रण उत्सव ने कच्छ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से गुजरात के कच्छ में चल रहे विश्वविख्यात रण उत्सव की मुलाकात लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक आनंददायक अनुभव है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि रण उत्सव में कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हैंडीक्राफ्ट की विविधता देखने को मिलती है।
इस साल कच्छ रणोत्सव का यह आयोजन 23 नवंबर से शुरू हुआ है जो 20 फरवरी तक चलेगा। यहाँ कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता दिखाई देती है। कच्छ के सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। रात के समय जब सफेद रण के ऊपर चांदनी फैलती है वहां का दृश्य अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। रण उत्सव का टेंट सिटी बहुत लोकप्रिय है। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले एक महीने में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग रणोत्सव का हिस्सा बन चुके हैं और देश के कोने कोने से आए हैं, विदेश से भी लोग आए हैं। आपको जब भी अवसर मिले तो ऐसे उत्सवों में जरूर शामिल हो और भारत की विविधता का आनंद उठाएं।
गौरतलब है कि सीमावर्ती कच्छ का मशहूर सफेद रण अब टूरिज्म की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल धोर्डो के सफेद रण में हर साल 4 महीने तक चलने वाले रणोत्सव की वजह से देश विदेश के सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय बन गया है। धोर्डो गांव के सरपंच मियां हुसैन बताते हैं कि रणोत्सव के चलते कच्छ में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं और ग्राम्य पर्यटन विकसित होने से पूरे जिले में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।
जी, रणोत्सव 2005 से यहाँ पे चालू हुआ है। हर साल में उसमें बढ़ोतरी होती रहती है और पूरा वर्ल्ड लेवल के लोग भी आते हैं, हमारे देश के भी आते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, G20 जैसी समिटें भी यहाँ हो चुकी है। इसके लिए धोर्डो का आज बहुत बड़ा एक टूरिज्म का इवेंट बन चुका है, जिसके लिए हमारे पूरे कच्छ को भी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उसकी वजह से रोजगार भी मिलता है और लोकल लेवल पे भी रोजगार मिलता है। इसके अलावा भी कई हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, और दिन धोर्डो में नई नई एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे कच्छ का विकास भी हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका ऐसा विजन था कि बॉर्डर का विलेज है वो इसी तरह डेवलपमेंट हो और यहाँ पे ये रण है, देख के लोग बाहर से भी आए और पूरे हमारे कच्छ को इसको बेनिफिट मिले, इसलिए हमारे गौरव की बात।
रणोत्सव न केवल कच्छ के सांस्कृतिक वैभव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि स्थानीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिक्रमा के लिए बूथ से परेश मारू के साथ अशरफ नथवाणी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीद रहे हैं जिन पर भारतीयों के पसीने की कमाई और भारतीय मिट्टी की सुगंध है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि 2025 ने भारत को और भी अधिक आत्मविश्वास दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने आशा व्यक्त की 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने सभी को 2026 की शुभकामनाएं दी।
स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है।
So we have seen India's rich handicraft and traditional crafts are a living expression of the nation's history, culture and creative spirit. Rooted in centuries-old traditions and shaped by regional identities. So these crafts reflect the skills, stories and values passed down from generation to generation. So from intricate textiles and pottery to metalwork, woodcraft, each creation carries the imprint of India's diverse communities and their deep connection with the heritage.
इन शिल्प कलाओं का संरक्षण और संवर्धन केवल कला की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका को भी सहारा देने और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने से भी जुड़ा है। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी पारंपरिक शिल्प कलाएं अतीत और वर्तमान के बीच एक अटूट सेतु बनी हुई हैं, जो लचीलेपन, शिल्प कौशल और चिरस्थायी सुंदरता का प्रतीक हैं। और परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले कहाँ चलेंगे?
Yes, we are beginning with AIIMS. So, the All India Institute of Medical Sciences has called for greater public awareness on the medical condition, which is congenital differences in sex development, DST. Well, thereby I'll be telling you about it and urging parents not to panic. So DSD is a group of rare conditions involving genes, hormones and reproductive organs which results in a person's sexual development being different to most other people's. So addressing a press conference in the national capital, director of AIIMS New Delhi, Dr. M. Srinivas today raised concern that many children struggling with this disorder are often stigmatized, with some parents struggling to deal with this due to lack of information and awareness, which can be the case, and he advised the parents not to panic and assured them that timely medical guidance and counseling can help manage such conditions appropriately. Meanwhile, talking exclusively to Akashwani News, professor at the Department of Pediatrics in Ames, New Delhi, Dr. Vandana Jain said that the differences in sex development are not a rare disease, but simply they are a genetic disorder.
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उनके माध्यम से ये सबके पास ये मैसेज पहुंचा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बारी पेरेंट्स सिर्फ केमिस्ट के पास जाके जैसे एजिथ्राल या ऑगमेंटिन या कोई भी दवाई सिर्फ खांसी के लिए भी ले लेते हैं तो वो कोई कॉफ सिरप नहीं है इसी तरह दस्त के लिए कई लोग पेरेंट्स सीधे जाके केमिस्ट से मांग के दवाई और एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज़्यादातर बीमारियाँ छोटे बच्चों में वायरल होती हैं उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता और थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक लेने से जो बग्स हैं वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं ताकि बच्चे को कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको कारगर नहीं सिद्ध होंगी और ओवरऑल भी इस तरह के बैक्टीरिया पनपेंगे जो कि दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बच्चा निमोनिया या इस तरह का कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल में आता है तो काफी बार हम देखते हैं कि उस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें पूरे आई थिंक इस पूरे प्रोग्राम का हमारा मकसद यही था कि एक अवेयरनेस जनरेट करें कि ये रेयर है बट उतना भी रेयर नहीं है 1 in 4,000 to 5,000 बेबीज में इस तरह के विकार हो सकते हैं जिसको हम डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट कहते हैं तो ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है बस एक बनावटी एक फर्क है लेकिन बनावटी फर्क सिर्फ जेनिटेलिया का नहीं गोनाड्स का भी है कुछ और ऑर्गन्स या सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो अगर बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल में आइए और बच्चे को दिखाइए अच्छे अस्पतालों में जनरली एक पूरा टीम अप्रोच से बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट होगा
सो मूविंग ऑन सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेज द इश्यू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन हिज मन की बात प्रोग्राम अलोंग विद ट्रेडिशनल क्राफ्ट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR Director General Dr. Rajiv Behl said that antibiotics should only be used when needed and prescribed by doctors. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Behl said overuse or irrational use of antibiotics for infections like pneumonia, this can lead to resistance, making them less effective. So he said several states have taken significant steps to ensure that antibiotics are not sold over the counter and are only dispensed with a prescription. So, in his Man Ki Baat program on Akashwani yesterday, coming back to it, Prime Minister Narendra Modi cautioned that antibiotics should not be taken mindlessly. He said antibiotics should be used only on the doctor's advice and urged everyone to refrain from using medicines at their own discretion.
Indian Council of Medical Research ne haal hi mein ek report jari ki hai. Isme bataya gaya hai ki pneumonia और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं है जिन्हें यूं ही ले लिया जाए इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें
रिमेंबर दैट लिसनर्स एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन माइंडलेसली वेल मूविंग ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज बीन रिसेंटली साइंड बिटवीन द पुणे प्रिस्टीन रोटरी क्लब एंड द पुणे जिला परिषद टू सेट अप स्किल लैब्स इन 30 स्कूल्स ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट We have more details on this from our Pune correspondent.
This initiative is being implemented under the guidance of senior scientist Dr. Vijay Bhatkar and through the efforts of Administrator and Chief Executive Officer of the Pune Jilla Parishad, Mr. Gajanan Patil. The convener of this project, Mr. Sudhin Apte, spoke to Akashwani about it.
The great thing that Government of India has done is they have introduced skill level training or skill training in National Education Program itself. So NEP 2020 recommends schools to give exposure to children on two types of skills. They say give exposure to traditional vocational skills like carpentry, gardening, electrical, plumbing, etc. And NEP also recommends to give exposure to students about new age or digital skills. like customer service, online and portal, digital marketing, robotics, automation, drone, etc. And we have committed to develop 30 such labs, which will give exposure to 15 schools, combination of traditional vocational skills as well as new age digital skills. We will establish 15 skills, and students in 5th, 6th and 7th standard will get hands-on exposure to some of these skills. They will be able to try out their hands with carpentry, plumbing. They also will get a lot of joy. The education policy recommends action-based learning.
In addition, the Pune Jilla Parishad administration is setting up 100 robotics, tinkering and astronomy labs in the district under the Pune Model School project using its own funds. The CEO Gajanan Patil expressed confidence that all these initiatives will help foster innovation, a scientific outlook and a love for skill-based education among the students. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
और अब चलते हैं खेल जगत की ओर और जानते हैं कि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है. तो सबसे पहले बात करते हैं शतरंज की. भारत के अर्जुन एरगेसी और कुनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड मुकाबले में अपने अपने वर्ग के कांस्य पदक जीत लिए हैं. मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरिया चिकिना ने खिताब अपने नाम किए. कार्लसन ने 10.5 अंक के साथ अपना छठा विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता. व्लादिविस्लाव आर्टेमियेव 105.5 के स्कोर के साथ दूसरे और एरिगेसी 98 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेटेड अर्जुन एरिगेसी एंड कुनेरू हम्पी फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हैपेंड इन दोहा. एंड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर मोदी कमेंडेड द चेस ग्रैंड मास्टर्स फॉर देयर डेडिकेशन टू द गेम एंड ऑल्सो विश देम बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स. नाउ इन सम बिजनेस न्यूज. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended the first trading session of the week with losses of around 0.4%. Sensex fell 346 points to close at 84,696, while the Nifty dipped 100 points to settle at 25,942.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
In today's episode, we remember one of the earliest moderate leaders, Umesh Chandra Banerjee, who was born on December the 29th, 1844. He was the co-founder and the first president of the Indian National Congress.
Banerjee won a government scholarship to study law in England and was called to the bar in June 1867. In England, he founded the London Indian Society and advocated representative and responsible government in India. He returned to Calcutta in 1868 and, within a few years, became the most sought-after barrister in the High Court.
In 1883, he defended Surendranath Banerjee in contempt of court case against him in the Calcutta High Court. Umesh presided over the first session of Congress in 1885. In the 1886 session held at Calcutta, under the presidency of Dadabhai Nauroji, he proposed the formation of standing committees of the Congress in each province for better coordination of its work. And it was on this occasion that he advocated that the Congress should confine its activities to political matters only, leaving the question of social reforms to other organizations.
He was the president of the Indian National Congress again in the 1892 session in Allahabad. We pay tribute to this great leader.
We also remember revolutionary freedom fighter Bhupendra Kumar Datta, who died on the 29th of December 1979. A prominent Jugantar leader, he went on hunger strike for 78 days in Bilaspur jail in December 1917, which was till that time the longest ever period of hunger strike in any country.
Born on the 8th of October 1892 in the village Thakurpur in Jessore, now in Bangladesh, Datta got inspired by the anti-partition agitations of the Anushilan Samiti and joined the organization.
और अब हम याद कर रहे हैं राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खां को. आज उनकी पुण्यतिथि है. हकीम अजमल खां अपने समय के सबसे कुशाग्र और बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए.
Well, we are also remembering legendary Hindustani classical vocalist and musicologist Pandit Omkarnath Thakur. And today it's his death anniversary, the influential educator, musicologist as well. And he is famously known as Pranav Rang by his pen name.
और हम याद कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है, जी हाँ, शिवराज रामशरण को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने 1954 से 1955 तक ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के पॉलिटेक्निक संस्थान में काम किया था।
वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, द एक्सेप्शनल हिंदुस्तानी क्लासिकल सेमी क्लासिकल नाट्य संगीत वोकलिस्ट एंड मराठी थिएटर एक्टर एज वेल। स्टार्टेड हिज म्यूजिक लेसन्स एट द एज ऑफ 5 एंड रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एज वेल।
जी हाँ, दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, शास्त्रीय संगीतज्ञ और नाट्य संगीतकार थे। वो गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीणा खड़ीकर, उषा मंगेशकर और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के पिता थे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ की स्मृति के दिवस पर आयोजित करने की परंपरा रही है। और हम याद कर रहे हैं रामानंद सागर को, जो भारतीय फिल्म निर्देशक रहे हैं। रामानंद सागर सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके करियर की शुरुआत राइडर्स ऑफ द रेल रोड यानी 1936 में ये प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म से उनकी शुरुआत हुई थी। रामानंद सागर का झुकाव फिल्मों की ओर 1940 के दशक से ही आया।
So Ramanand Sagar fought against immense obstacles and but bring the sacred tale of Ramayan to everybody's life, and we reminisce it and we are deeply, deeply grateful for that.
और भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है, जन्मदिन है। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था। अपने रूमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों की लंबे सिलसिले के बल पर करीब डेढ़ दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा को पहला सुपरस्टार मिला, जिसका जादू चाहने वालों के सिर पर चढ़कर बोलता था।
कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
Well, the actor who turned stardom into a mass emotion, well, Rajesh Khanna, first superstar, redefined stardom in the late 1960s and 70s with his unmatched charisma.
बिल्कुल, उनका अभिनय करियर की जो शुरुआत हुई थी वो नाकामियों के बाद इतने तेजी से परवान चढ़ा कि उनका मिसाल जो बहुत ही कम मिलती है। परिवार की मर्जी के खिलाफ अभिनय के बतौर करियर चुनने वाले राजेश खन्ना ने वर्ष 1966 में 24 बरस की उम्र में आखिरी खत फिल्म से सिनेमा जगत में कदम रखा।
जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।
It's a life lesson as well, right? And well, he taught India that stardom is not noise, it is silence, grace and feeling, and Rajesh Khanna lives forever in dialogues, eyes and hearts of generations who still love him deeply.
Zindagi ke safar mein guzar jaate hai jo maqam.
पछताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर गम से बेगाना होता है। शमा